सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्धट्ठमला विशुद्धबुद्धिये लद्ध सौवत्था तिह्वणशिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सव्वे तिह्वणभवनपसर्य पच्छक्कवबोहकिरणपरिवेढो उयो वियणत्तवणो अरहन्तदिवाय रोजयौ तिरयणखगणिहाये णुत्तारिय मोहसेण्णशिरणिवो आयिरियरावुपशिवौ परिवालिय भवियजियलो अन्नानन्दयारे अणोरपारे भमन्तभवियाणम् उज्जोजेहि कौ पश्यन्तु सया उवच्छाया दुहतिवति सा विनडिय तिह्वणभवियाणसुठुरायेण परिठवियाधमपवा सुजलवाणपयाणेन सन्धार्यशीलहरा उत्तार्यचिरपमाददुःशीलभरा साहूजयन्तु सव्वे शिवसुहपः सण्ठियाहु निगलम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी हम नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड है उसमें कृति अनुयोग द्वार देख रहे हैं, उसमें पृष्ठ संख्या 50 पर आ गए हैं। 50 देखो, यहाँ अभी हमने परमावधि की बात बहुत विस्तार से देखी है, परमावधि के ज्ञान के कितने भेद होते हैं, उसमें महत्व की बात इतनी हमको ध्यान रखनी है कि जितने द्रव्य के विकल्प है उतने ही क्षेत्र के हैं, उतने ही काल के और उतने ही भाव के हैं, इसलिए सबको शलाका राशि एक ही है और वो कितनी है। तो अग्नि कायिक जीवों के अवगाहना के भेद उसको गुणित करना है अग्नि कायिक जीवों की संख्या से, इतनी बात हमने विस्तार से देखी है। अब यहाँ 50 पृष्ठ पर ये जो नीचे का संघा समाधान है उसके ऊपर की दो लाइन, परमावधि के काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल होता है। परमावधि का भी उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है और उससे भी यथा योग्य असंख्यात से गुणा करेंगे तो सर्वावधि का विषय रूप काल उसका हमें प्रमाण समझ में आ जाएगा। शंका, यह एक ही लोक है, इस विश्व में लोक कितने हैं? हाँ अशोक भाई, इस विश्व में लोक कितने हैं? एक ही है और उसी में ही वो छह द्रव्य वहाँ जहाँ पाए जाते उसी को तो हम लोक कहते, तो पुद्गल द्रव्य तो लोक से बाहर तो है ही नहीं, तो एक ही लोक है। तो शंकाकार की शंका ऐसी है, परमावधि और सर्वावधि असंख्यात लोकों को जानते हैं, यह कैसे घटित होता है? प्रश्न ख्याल में आया? क्योंकि रूपी पदार्थ जो पुद्गल है वो तो लोक में ही है, तो लोक में जानते तो सभी लोक को जानते हैं, सभी पुद्गलों को जान गए तो भी बाकी क्या बचा अभी जानने को? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यद्यपि सब पुद्गल राशि यानी संपूर्ण पुद्गल राशि असंख्यात लोकों को भरकर स्थित हो तो भी वे जान सकते हैं, इतनी अनंतानंत पुद्गल राशि है और वो समा गई है लोक के असंख्यात प्रदेशों में। यदि वो फैल कर असंख्यात लोकों में भी व्याप जाती, इतने प्रदेशों में, तो भी उसको जानते हैं? कहां काल की बात है? काल की बात हो गई। वो ऊपर की बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, देखो ऊपर क्या था, वो क्षेत्र और काल का वहाँ प्रमाण बता रहे थे, बराबर है, और फिर उसमें से सर्वावधि का काल बता दिया, ये विषय संपूर्ण हुआ। अब नई शंका उत्पन्न हो रही, काल के बारे में शंका नहीं है, क्षेत्र के बारे में। तो कहते यदि असंख्यात लोक होते तो भी वहां तक के पुद्गलों को जानने की इसको शक्ति है। शक्ति कितनी है उसका वर्णन कर रहे ना, इस प्रकार उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है, यानी शक्ति बताई गई है। जैसे इंद्र में कितनी ताकत है मालूम है आपको? जम्बू द्वीप को पलटा सके, तो कितनी बार पलटाता होगा जम्बू द्वीप? ना ही उसको पलटाने का विकल्प आएगा और ना ही, परंतु उसकी ताकत कितनी है, वो ताकत बताने के लिए कहते हैं जम्बू द्वीप को पलटाने की उसमें ताकत है। इस तरह से इनको कितना क्षेत्र तक जानने की कैपेसिटी है जानने की, तो असंख्यात लोग इतना क्षेत्र आप ले लो, वहां तक के पुद्गलों को जानने की, वहां पुद्गल नहीं है तो क्या हुआ, जानने की शक्ति तो है ना, क्षेत्र उनका अधिक है, काल अधिक है, क्षेत्र भी अधिक है, ये बात बताना चाहते हैं। शंका, जिनत्व के अविदा भाव रखने वाले परमावधि और सर्वावधि को जिनका अविशेषण किस लिए दिया जाता है? परमावधि और सर्वावधि कहते हैं तो उसमें वो जिनत्व है ही, ये ख्याल में आता है, क्योंकि वो तो संयतों के ही होता है, इसलिए उनमें तो जिनत्व तो है ही। तो फिर दोबारा परमावधि के आगे फिर जिन शब्द लगाने की क्या जरूरत है? उसका समाधान, इस प्रकार शंकाकार का कहना सत्य है, किंतु यहां सर्वावधि और परमावधि विशेषण है और जिन विशेष्य है, जिसका विशेषण है उसको विशेष्य कहते हैं, क्योंकि वे अवधि ज्ञान के अनेक प्रकारों के आधार है। ये जिन जो है विशेष्य है, जिनको विशेषण से बताया जाता है, वो जिन उनके विशेषण अलग अलग है, तो ये विशेषण देने का आधार एक ही है, कौन से? जिन। और उसमें कोई अवधि देशावधि है, कोई परमावधि है, कोई सर्वावधि है, तो आधार एक ही है, उनके विशेषण यहां बदल बदल कर अलग अलग कह रहे हैं। अतएव उक्त विशेषण विशेष्य भाव में कोई दोष नहीं है, यह सिद्ध है। यानी दोबारा उसमें जिन शब्द लगाए तो कोई दोष नहीं है। सर्वावधि रूप जो जिन है उनके लिए नमस्कार हो। ये शुरू में ही भगवानों को नमस्कार करके यहां ग्रंथ की शुरुआत की जा रही है। नमो अनंतो ही जिनानम, देशावधि हो गए, परमावधि हो गए, सर्वावधि हो गए, अभी है अनंतावधि हो चल रही बात। तो अनंतावधि जिनों को नमस्कार हो। अनंत इस प्रकार कहने पर उत्कृष्ट अनंत का ग्रहण है। उत्कृष्ट अनंत जो सबसे मैक्सिमम अनंत, जिसके पार कोई संख्या नहीं है, वो अनंत, उसको कहते हैं उत्कृष्ट अनंत। हाँ, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जितने हैं उसको उत्कृष्ट अनंत कहते हैं, उससे महान और कोई संख्या नहीं है, क्योंकि यहां द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन है। वह उत्कृष्ट अनंत अवधि जिसके होती है वह अनंतावधि है। ये उत्कृष्ट अनंत को जानने वाला कौन होगा? केवल ज्ञानी। ये अवधि ज्ञान की बात नहीं हो रही है। शंका, अवधि मर्यादा उसकी को कितनी? अनंत, अनंत मर्यादा यानी कोई मर्यादा नहीं है। या अनंतावधि का ऐसा भी अर्थ करेंगे जिसका अंत नहीं और जिसकी अवधि नहीं, अनंत अनावधि। देखो अब हम पढ़ेंगे, उत्कृष्ट आनंद अवधि, अनंत अवधि जिसकी होती है वह अनंतावधि है। फिर शंका, अवधि यह नाम की अपेक्षा वस्तु निमित्तक संज्ञा है और यहाँ उत्कृष्ट अनंत से बाह्य कुछ भी वस्तु नहीं है, अतः उत्कृष्ट अनंत को अवधिपना उचित नहीं है। जिसको मर्यादा है, मर्यादा कब कहेंगे, उसके पार और कुछ वस्तुएं होगी तो हम कहेंगे यहाँ तक, अवधि का अर्थ क्या है लिमिट, यहाँ से यहाँ तक ऐसा कहेंगे तो तक कब बनता है कि आगे भी कोई अन्य वस्तुएं हैं, परंतु उत्कृष्ट अनंत के आगे कुछ वस्तुएं ही अभी बची नहीं है तो इसलिए वो मर्यादा है ऐसा कह नहीं सकते, इसी शंकाकार की शंका है। समाधान, नहीं, क्योंकि अवधि के समान जो है वह अवधि है, इस प्रकार उपचार से उत्कृष्ट अनंत को, ये उ का अ करना, उत्कृष्ट अनंत को अवधि मानने में कोई विरोध नहीं है। फिर शंका, अवधि यह उत्कृष्ट अनंत से क्या पृथकभूत है, अथवा उत्कृष्ट अनंत ही अवधि है, ये दो प्रश्न पूछे शंकाकार ने। ये उत्कृष्ट अनंत से अवधि अलग है क्या, उत्कृष्ट अनंत ही अवधि है, और फिर स्वयं ही उत्तर दे रहा है उसमें से, इनमें प्रथम पक्ष तो बनता नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट अनंत को छोड़कर द्रव्य और उनकी पर्याय नहीं पाई जाती। द्रव्य और उनकी पर्याय कितनी है, तो ये तो उत्कृष्ट अनंत, पहले भी ये सभी द्रव्य पर्याय ऐसा कुछ आया था यहाँ इसमें उत्कृष्ट अनंत के लिए, और उत्कृष्ट अनंत अवधि ही हो सो भी नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट अनंत के दोनों ही पार्श्व भागों में अन्य का अभाव होने से उसे अवधि मानने में विरोध है। उत्कृष्ट अनंत के दोनों ही पार्श्व भागों में, दोनों ओर, हाँ कोई संख्या ही नहीं है ना, उसके पार भी कोई संख्या नहीं है तो उसको अवधि नहीं कह सकते, अर्थात उत्कृष्ट अनंत से कोई वस्तु बाहर नहीं है इसलिए उसे अवधि नहीं मानना चाहिए। ये शंकाकार की इतनी बड़ी शंका हो गई। अब उसका समाधान, शंकाकार ने जिन दो पक्षों में दोष दिखाए हैं उनमें से प्रथम पक्ष तो है नहीं क्योंकि वैसा हम स्वीकार ही नहीं करते। पहला पक्ष क्या था, क्या पृथकभूत है क्या, या अपृथकभूत है, तो पहला पक्ष तो टाल दिया। द्वितीय पक्ष में कहा गया दोष भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ अभिविधि को ग्रहण किया है, विधि और निषेध ऐसा दो शब्द होते ना, अभिविधि का एग्जैक्ट अर्थ मुझे भी पता नहीं है, अभिविधि पढ़ेंगे आगे देखते। दूसरी बात यह है कि एक वस्तु में द्वित्व का विरोध भी नहीं है क्योंकि अनेकांत का आश्रय कर एक में द्वित्व का अविरोध है, एक में ही दो पने का अनेकांत के आश्रय से अपेक्षा से उसमें दो पना सिद्ध कर सकते हैं, तो इसमें भी ये बात हो सकती है। अथवा तीसरी बात, यहाँ अवय विनाशों का वाचक अंत शब्द ग्रहण करना चाहिए, ये विनाश का अंत है ने विनाश, और अनंत है ने जिसका विनाश नहीं है उसको अनंत कहेंगे। अंत अलग अलग शब्द अर्थों में आते हैं ना, अंत शब्द, तो यहाँ विनाश के अर्थ में उसका शब्द ग्रहण करें। अवधि का अर्थ मर्यादा है, वह उत्कृष्ट अनंत से पृथकभूत है, अंत और अवधि जिसके नहीं है वह अनंत अवधि है। जैसे हम अगुरु लघु कहते हैं, अगुरु अलघु, वैसे यहाँ अंत जिसको नहीं और अवधि जिसको नहीं है, अनंत अनवधि, तो अनंत अवधि। ये अलग अलग प्रकार से ये अर्थ कैसा सही है इसको बता रहे हैं। अभेद होने से जीव की भी यह संज्ञा है, अनंतावधि रूप जो जिन है वे अनंतावधि जिन है उनको नमस्कार हो। अभेद होने से ने गुण और गुणी अभेद होते हैं ना, तो उस अपेक्षा से यह अनंतावधि ज्ञान बताया और वो जीव से अभेद है इसलिए अनंतावधि जिनों को यह नमस्कार किया है। फिर शंका, अनंतावधि चाहिए। अनंतो ही जिना नाम केवल नाणिनो, अनंतावधि जिन केवल ज्ञानी होते, वो कहाँ निकाल देना। अनंतावधि जिन केवल ज्ञानी होते हैं, अभी हमने जो देखा ना उत्कृष्ट अनंत को कौन जानेगा, केवल ज्ञानी। तो ये अनंत और अनावधि वाले कौन है, वो केवल ज्ञानी है, इसलिए वे सब जिनों से महान होते हैं, उनको पहले ही नमस्कार क्यों नहीं किया। जैसे अभी हर बार जो पूछते इनको पहले नमस्कार क्यों नहीं किया, वैसे कहते हैं केवल ज्ञानी को तो करना चाहिए था पहले में पहले। समाधान, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के महात्म्य का ज्ञान कराने रूप गुण की अपेक्षा केवल ज्ञान से सर्वावधि महान है, अतएव उन्हें पहले ही नमस्कार करने में कोई विरोध नहीं है। सर्वावधि का स्वरूप देखते हैं तो हमें अचरज होता है या उसकी महानता भासित होती है, उससे भी केवल ज्ञान कितना महान है। वो सर्वावधि के अपेक्षा से कहेंगे तो उसके महात्म्य यानी उसका महानपना भासित होता है, इसलिए पहले सर्वावधि को नमस्कार किया। हमने देशावधि से शुरुआत किया था ना, पहले देशावधि को, फिर परमावधि को, फिर सर्वावधि को, अभी केवल ज्ञान को। अनंतावधि को या केवल ज्ञानी को? हाँ, हाँ ऐसे ही हर जगह, क्योंकि उसकी अपेक्षा इसके गुण की पता चलता है ना। अभी तक यही अपेक्षा से बताया है। परमावधि का पता कैसे चलता है, तो देशावधि की अपेक्षा उसका वर्णन करेंगे। सर्वावधि को बताना है तो कैसा करेंगे कि परमावधि का ये उत्कृष्ट द्रव्य, उससे इतने इतने गुणा है इसलिए उसको महान करना, इसके गुण बताने के लिए उसको महान कहा। अभी नीचे वाली शंका, अब शंकाकार क्या कहते हैं देखो, मिथ्यात्व से चूंकि सम्यक्त्व का महात्म्य जाना जाता है अतः सम्यक्त्व की भक्ति की अपेक्षा मिथ्यात्व का नमस्कार क्यों नहीं किया जाता। ये कोई ऊपर वाला है तो वो नीचे वाले से उसका पता चलता है, उसका महात्म्य जाना जाता है, तो ये मिथ्यात्व का पहले नमस्कार करो। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मतिश्रुत और अवधिक ज्ञानों से केवल ज्ञान का महात्म्य जाना जाता है, उस प्रकार मिथ्यात्व से सम्यक्त्व महात्म्य नहीं जाना जाता। एक ज्ञानों से जाना जाता है, मिथ्यात्व से वो जाना नहीं जाता। दूसरी बात, जो जिसका भक्त अथवा मित्र होता है वह उसके विरोधियों की भक्ति नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने में विरोध है। क्या कहते हैं, जो सम्यक्त्व का भक्त है या मित्र है वो विरोधियों की यानी मिथ्यात्व की भक्ति कैसे करेगा, ऐसा करने में विरोध है। अथवा फिर दूसरी बात कहते, पश्चादानुपूर्वी अर्थात विपरीत क्रम दिखलाने के लिए देशावधि जिनादिकों को पूर्व नमस्कार किया है। अभी हम 9वें पुस्तक में आए हैं, पहली पुस्तक में अनुपूर्वी का वर्णन आया था। ये अनुपूर्वी यानी गत्यानुपूर्वी कर्म की बात नहीं है, ये पश्चात अनुपूर्वी है या अनुपूर्वी है जिसको कहते हैं, क्रम को बताते हैं। जैसे हम ऋषभ से लेकर महावीर तक के सर्व भगवानों को याद करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो ये तो क्रम हुआ 1 से 24 तक। हम यदि कहेंगे 24 से लेकर फिर 23वां फिर 22वां ऐसे नमस्कार करते तो उसको कहेंगे पश्चात अनुपूर्वी, उल्टा क्रम। कभी कभी हम चीजें यहाँ याद करते हैं ना, तो ये उलट पुलट कैसे भी याद करते हैं, बीच में ही किसी को यानी विदाउट क्रम भी हम याद करते, तो उसके भी ये तीन प्रकार है, शुरू से अंत तक, अंत से शुरू तक, या एट रैंडम कहीं से भी। ये अनुपूर्वी के भेद हमने पहले पहले भाग में देखे थे। तो यहाँ कहते हैं पश्चाद अनुपूर्वी अर्थात विपरीत क्रम, विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम दिखलाने के लिए, यानी देशावधि के शुरुआत के वहां से किया और केवल ज्ञानी तक गए ना, तो ये उल्टा क्रम हुआ। है कौन सबसे महान? केवल ज्ञानी। फिर भी इनके द्वारा उनकी महानता, उसके द्वारा उनकी महानता, इस तरह से देशावधि से परमावधि, फिर सर्वावधि, फिर अनंतावधि। विपरीत क्रम दिखलाने के लिए देशावधि जिनादिकों को, जिनादिक यानी देशावधि परमावधि आदि सारे, पूर्व में नमस्कार किया है। अब श्रुत और मनपर्य ज्ञान यानी श्रुत ज्ञान और मनपर्य ज्ञान तथा तप आदि चूंकि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, यानी पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, यह हमें पता है। वैसे मनपर्य ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है, तप भी है जो मति ज्ञान पूर्वक होता है। अतः मति ज्ञान में उत्पन्न हुई श्रद्धा से युक्त गौतम भट्टारक उत्तर सूत्रों के द्वारा मति ज्ञानियों को नमस्कार करते हैं। ये आगम की रचना गणधरों ने की है और यहाँ हमें तो महावीर का उपदेश जो प्राप्त हुआ है वो गौतम भट्टारक यानी गौतम गणधर की बात है नहीं, तो उन्होंने ये सूत्र रचे हैं। तो पहले देशावधि जिनों को नमस्कार किया, फिर परमावधि की, फिर सर्वावधि, फिर केवल ज्ञानियों को। अब कहते हैं मति ज्ञान में उत्पन्न हुई श्रद्धा से युक्त गौतम भट्टारक। मति ज्ञान में अभी श्रद्धा है ना, उसकी भक्ति, मति ज्ञानियों की अभी बात करेंगे। मति ज्ञानियों को नमस्कार कर रहे हैं, ये मति ज्ञानियों को नमस्कार करने यानी कोई मति श्रुत वाले हम भी उसमें आ गए ये बात मत सोचना। गौतम गणधर है, मुनिराज है, वो तो चौथे पांचवे वाले को या मिथ्या दृष्टि को तो नमस्कार करेंगे नहीं, वो तो अन्य मुनिराजों को नमस्कार करेंगे। और भी विशेष बुद्धि वाले जो मुनिराज है, मति ज्ञान में तो ऑर्डिनरी मति ज्ञान वाले की क्या बात है, मति ज्ञानी जिन लिखना है ये वो भी संयत हो गए, और मति ज्ञानियों की बात है तो कुछ विशिष्ट मति ज्ञान होना चाहिए तभी तो ये वहां नमस्कार कर रहे हैं। तो कहते हैं नमो कोठ बुद्धिणम, छठा नंबर का सूत्र, कोष्ठ बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। अब ये कोष्ठ किसको कहना वो बता रहे हैं। शाली, व्रीही, जव और गेहूं आदि के आधारभूत कोथली, पल्ली आदि का नाम कोष्ठ है। ये गेहूं या चोखा, हाँ, ज्वार है या तंद क्या है, चावल, चावल, हाँ, आदि जो हम अनाज धान रखते हैं, कोठार ना, हाँ, कोथली यानी बोरी, बोरी गोनी, कोथली, पल्ली का अर्थ क्या होता है, कोठार की माला है, मुझे ऐसा लगता है जो जमीन में ऐसे कोठार बनते थे बड़े बड़े, जिसको पेव कहते हैं, नहीं पेव नहीं, कुछ जमीन के अंदर, जमीन के अंदर बड़े बड़े होते थे तलघर जैसे, ऊपर से वो अनाज डाला जाता था उसमें, बीज, बीज नहीं, धान्याची रांजन नहीं, बड़े बड़े रूम जितने बड़े बड़े होते थे, रूम जितने बड़े बड़े कोठार जमीन के अंदर होते थे, भुयार नहीं कहते उसको, ये जो कुछ है कोष्ठ कोठार जिसको कहते, मगर वो अंडरग्राउंड कोठार जैसे रहते थे। इतना ही समझना, अनाज जिसमें स्टोर करते थे बहुत बड़े पैमाने में, उसको कोष्ठ कहना। यहाँ कोथली यानी वो तो
आगे आएगा,
नीचे कुछ लिखा है, भूयसाणम। ये भूमि में ही होते थे पहले बड़े बड़े कोठार, मैंने देखे भी है गांवों में, छोटे ऊपर से मुंह इतना रहता था और अंदर से पूरा यानी वो बराबर जैसे रूम जैसे होते थे अंडरग्राउंड, बहुत बड़े बड़े, और उसमें अनाज स्टोर किए जाते थे। देखो ये केवल वो थैली या कोथली वो तो बोरी ऐसा नहीं समझना, हाँ नीचे संस्कृत में देखो, हम पूरे पढ़ेंगे, एक दूसरे में शायद है उसका, उपकरिस धारणाए जुत्तो पुरिसो गुरुव एसेणम नाना विह गंथेसु विथारे लिंग सद्द बीजाणी गहिऊण नियम दिए मिस्सेन विना धरे भी मदि कोठे जो कोई तस बुद्धि निदिठा कोठ बुद्धित्ति। अब वो कोष्ठ बुद्धि वाला कितना कितना क्या क्या धारण करता है, उसकी बुद्धि कितनी है, वो सब इसमें समझाया नीचे। अभी कोष्ठ बुद्धि किसको कहना वो फिर बता रहे, कोष्ठागारा गारिक स्थापिता नाम संकीर्णा नाम विनष्ठा नाम भूयसाम धान्य बीजा नाम यथा कोष्ठे अवस्थानम तथा परोपदेशात अनवधारिता नाम अर्थ ग्रंथ बीजा नाम भूयसाम अव्यतिकीर्तना नाम कोष्ठ बुद्धि। कोठय धन्न सुनिगल सुतत्था कोठ बुद्धिया। अब हम आगे पढ़ेंगे वो शायद हमें पता चलेगा कोष्ठ बुद्धि। श्रुत ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य व पर्यायों को धारण करने रूप गुण से कोष्ठ के समान होने से, अभी पूरा ही श्रुत को धारण करना यानी पूरा ही वो बड़ा कोठार ही होना चाहिए ना, जो पूरे धान्य को धारण करता है। कोथली यानी हमारी जो यदि गोनी ले लेंगे तो इतने इतने अनाज धारण करता है, उसको नहीं लेना, पूरे खेत का अनाज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ये पूरा कोठार हो। तो श्रुत ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य व पर्याय धारण करने रूप गुण से कोष्ठ के समान होने से उसे उस बुद्धि को भी कोष्ठ कहा जाता है। कोष्ठ रूप जो बुद्धि वह कोष्ठ बुद्धि है, इस अर्थ को धारण करने का काल जघन्य से संख्यात वर्ष और उत्कृष्ट से असंख्यात वर्ष है, क्योंकि असंख्यात और संख्यात काल तक धारणा रहती है ऐसा सूत्र पाया जाता है। मति ज्ञाने ने वो जानता है ने, वो धारणा में भी है ना, उनके इतनी सारी बुद्धि में है तो वो धारणा के बल पर ही होगी, यानी उनकी वो धारणा ज्ञान में है, ये सारा पढ़ लिया अभ्यास किया। अभी जैसे हमने भक्तामर बचपन में याद किया था, अभी एक श्लोक स्टार्टिंग करो तो फिर याद आता है पूरा श्लोक, भूल गए ना उसकी बात नहीं है। ये धारणा ज्ञान में पूरा ही समस्त श्रुत ज्ञान संबंधी समस्त द्रव्य पर्याय को धारण करने वाली जिसकी बुद्धि है उसको कोष्ठ बुद्धि का, तो उसका कितने धारण करने का काल कितना है, कितने काल तक वो उनके धारणा में है, तो कहते संख्यात वर्ष और अधिक से उत्कृष्ट से असंख्यात वर्ष, क्योंकि सूत्र ऐसा है कि असंख्यात काल तक धारणा रहती है। शंका, यह किस कारण से होता है? निमित्त पर ही दृष्टि है ना। जीव की अपनी योग्यता से होता है ऐसा नहीं, क्योंकि निमित्त की अभी अपने शास्त्र निमित्त प्रधान यहाँ कथन होता है, तो किस कारण होता है? समाधान, धारणावरणीय कर्म के तीव्र क्षोभ से होता है। धारणा में कुछ नहीं रहना तो ये क्या बताता है? धारणा आवरणीय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। जितना धारणा आवरणीय कर्म घटेगा तो उतना धारणा में अधिक रहेगा, तो अभी कर्म की पूजा करनी पड़ेगी तो ये हटेगा। जीव अपनी योग्यता से ज्ञान अधिक प्रकट करता है तो धारणा वाला वो कर्म भी हट जाता है। फिर भी यहाँ हम निमित्त की भाषा बोल रहे हैं, तो धारणा आवरणीय का तीव्र क्षोभम, तीव्र क्षोभम यानी वो हटना, उघाड़ अधिक होना, क्षोभम यानी उघाड़ अधिक है। उक्त बुद्धि के धारकों के भी कोष्ठ बुद्धि संज्ञा है। कोष्ठ बुद्धि तो पहले ज्ञान कितना है उसको बताया, ऐसे ज्ञान वाले जीवों को भी कोष्ठ बुद्धि कहते हैं, क्योंकि गुण और गुणी में सर्वत्र भेद नहीं है। जिन शब्द की आगे सर्वत्र प्रवाह रूप से अनिवृत्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सूत्रों का अर्थ नहीं बनता। सूत्र में क्या कहा था, नमो कोष्ठ बुद्धिनम, परंतु यहाँ कोष्ठ बुद्धि जिनानम ऐसा भी कहेंगे इन्हें जो संयत है, जिन है ना वे, और मति ज्ञानी की बात है, ये तो केवल ज्ञानी की हो नहीं सकती है, मति ज्ञानियों की अभी चर्चा चलेगी, उसमें कोष्ठ बुद्धि एक उसका एक प्रकार है। हाँ, रुद्धि में भी होती है ना, बुद्धि रिद्धि होती है, रिद्धियों में भी ये बुद्धि रिद्धि नाम की बुद्धि, हाँ, क्योंकि वो बुद्धि रिद्धि का एक प्रकार है। रिद्धियों में भी अलग अलग रिद्धियाँ होती है, जैसे चारण रिद्धि है, ये औषध रिद्धि है, वैसे ये बुद्धि रिद्धि है। रिद्धि यानी विशिष्ट वो बुद्धि का प्रकट होना। तो यहाँ तो ये मति ज्ञान का भेद है, कोष्ठ बुद्धि है, तो यहाँ आगे भी ये जिन की बात चल रही है, कोष्ठ बुद्धि ये ज्ञान की बात की, जिनके ऐसी कोष्ठ बुद्धि है उन जीवों को भी कोष्ठ बुद्धि कहते हैं। ऐसे कोष्ठ बुद्धियों को नमस्कार, यानी उसके आगे जिन शब्द पहले सूत्र से जो चल आ रहा है, नमो जिनानम, नमो अहोई जानानम, नमो परमोही जिनानम, तो वो शब्द यहाँ भी है उसकी अनुवृत्ति, यानी वो कंटिन्यूटी समझ लेना। अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी, तत्वार सूत्र हम पढ़े हैं तो उसमें कितने ही सूत्रों तक वो उसकी अनुवृत्ति चलती है। यहाँ जिसको जिन्होंने सुना है तत्वार सूत्र उनको पता है ये अनुवृत्ति यानी टू फॉलो, और वृत्ति वो शब्द आगे के सूत्रों में भी चलता रहता है, क्योंकि सूत्र की विशेषता होती है कि उसमें कम से कम शब्द वापरते हैं। तो जिनानम शब्द पहले आ गया, अभी आगे के सूत्र में नहीं है तो भी समझना चाहिए। देखो, जिन शब्द की आगे सर्वत्र प्रवाह रूप से, प्रवाह रूप यानी आगे के सूत्रों में चलता रहे उसको प्रवाह कहेंगे, अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सूत्रों का अर्थ नहीं बनता। फिर शंका, यदि जिन शब्द की अनुवृत्ति होती है तो फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनंतावधि कृति कर्म प्ररूपक सूत्रों में जिन शब्द का उच्चारण किस लिए किया जाता है? तो नमो जिनानम पहले सूत्र में जिन शब्द आ गया है, तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और अनंतावधि में वो जिन शब्द क्यों डाला? वहां भी अनुवृत्ति है ऐसा समझना था उसका समाधान। नहीं, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति को दिखलाने के लिए वहां जिन शब्द का उच्चारण किया जाता है, यह हर एक सूत्र में बता दिया चार बार, तो ये भी यही पद्धति आगे चलेगी, ये बताने के लिए वहां जिन शब्द अलग से डाला है। इसलिए कोष्ठ बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, यह सिद्ध हुआ। ऊपर एक शब्द आया कृति कर्म प्ररूपक सूत्र, ये कृति कर्म क्या होता है? क्या क्या एक कृति अनुयोग द्वार है ना ये, तो कृति कर्म कहना किसको? देखो, मुनियों के आवश्यक जो कार्य होते हैं ना, क्रियाएं जिसको कहते हैं, जिसको क्रिया कांड भी कहते हैं, वो हम जिस उपहास पूर्वक क्रियाकांडी है वो कहते, वो बात नहीं है। मुनियों की जो क्रियाएं आवश्यक होती है, तो उनकी क्रियाओं में क्या क्या होता है, भगवान की वंदना, स्तवन वगैरह जो सब सब बातें हैं ना, तो यहाँ वो नमस्कार कर रहे हैं, ये उनके कृति है, यानी साधुओं के लिए ये आवश्यक क्रियाएं हैं, उनके डेली रूटीन में ये किया ही जाता है। जैसे अरंतों की भक्ति है, सिद्ध भक्ति है, आचार्य भक्ति है, जो कुछ श्रुत भक्ति होती है, वैसे यहाँ ये कृति क्या लिखा, कृति कर्म, इसको कृति कर्म कहते हैं। अब हम यहाँ ये नमस्कार के अर्थ में देंगे इसको, देखो क्या कहते हैं ऊपर का शब्द, कृति कर्म रूप सूत्रों में, यानी नमस्कार रूप सूत्रों में ऐसा हम यहाँ लेंगे, क्योंकि नमस्कार करना या वंदना या स्तवन ये जो है वो भी उनका एक उनकी क्रियाओं में शामिल है ये बातें, ये उनके अलग अलग कर्म भी होते हैं, जैसे कृति कर्म है, पूजा कर्म है, और पांच पांच प्रकार है उसमें अलग अलग, यानी साधु की आवश्यक दैनिक क्रियाएं इतना समझ लेना उसको। कृति यानी वो तो कार्य, आवश्यक कर्म, कृति कृति कर्म। हाँ, कृति का वर्ग होता है वो अलग है, ये गणित के अर्थ में भी कृति शब्द आता है, वो कृति मात्र धारा, कृति धारा ऐसा भी हमने पढ़ा था ना वो। और यहाँ कृति कर्म का अर्थ होता है आवश्यक क्रियाएं, मुनियों की जो क्रियाएं होती है आवश्यक, उसको यहाँ कृति कर्म कहा है, मुनियों का कर्म, कर्म यानी करने लायक उनकी क्रियाएं। ये बात हो गई, यह सिद्ध हुआ। अब नीचे से दूसरी शंका ना उसको पढ़ रहे हैं। शंका, धारणा मति ज्ञानी जिनों को नमस्कार क्यों नहीं किया, क्या कहते, कोष्ठ बुद्धि जिनों को तो नमस्कार किया, तो यहाँ कहते धारणा मति ज्ञानी जिनों को नमस्कार क्यों नहीं किया, उसका समाधान नहीं, क्योंकि समस्त धारणा ज्ञान के विकल्पों का अवगाहन करने वाली कोष्ठ बुद्धि को नमस्कार करने पर सब धारणा ज्ञानियों को नमस्कार सिद्ध है। कोष्ठ बुद्धि किसको कहते हैं, धारणा ज्ञानियों के जितने कोई भेद पॉसिबल है वो सब कोष्ठ बुद्धि वाले में है। कोष्ठ बुद्धि तो उत्कृष्ट से सभी वो धारणाओं को जानता है, इसलिए उसमें वो गर्भित है धारणा ज्ञानियों की बात। फिर शंका, मति ज्ञान से अवधि और केवल ज्ञान के विषय की विशेषता का ज्ञान होने से तथा उनकी उत्पत्ति का कारण होने से पहले ही मति ज्ञानियों को नमस्कार क्यों नहीं करते, जैसे अभी तक पूछ रहे हैं तो वहां उत्तर भी दिया था कि उसके कारण उसकी महानता भाषित होती है, तो यहाँ वही फॉर्मूला भी शंका करने लगाया, तो पहले ही मति ज्ञानियों को नमस्कार करना था। समाधान, नहीं, क्योंकि गौतम स्थविर का यहाँ ऐसा भाव नहीं है, स्थविर यानी मुनिराज, गौतम मुनिराज जो है उनका यहाँ ऐसा भाव नहीं है, ये बात सिद्ध करते हैं। शंका, उनका ऐसा भाव नहीं है यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, मति ज्ञानियों को पहले कृति कर्म नहीं करने से, पहले नमस्कार नहीं करने से, यहाँ आई ना बात कृति कर्म की, बात कृति कर्म किया है ने? वो उनके जो आवश्यक क्रिया में जो नमस्कार करते उसको नहीं किया, तो मति ज्ञानियों को पहले कृति कर्म नहीं करने से उनके उक्त भाव का अभाव जाना जाता है। ये गौतम गणधर ने, गौतम मुनिराज ने ये रचना की ना आगम की, तो उन्होंने पहले जिनों को नमस्कार किया, फिर देशावधि को, परमावधि को, सर्वावधि को, अनंतावधि को, इस तरह से अब ये मति ज्ञानियों की बात कर रहे, तो उन्हें उनको पहले नमस्कार करने का भाव था, अभी कोष्ठ बुद्धि को नमस्कार कर रहे। और भी कारण बता रहे, मति ज्ञान परोक्ष है किंतु अवधि और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिया मन आदि की अपेक्षा नहीं है। अवधि और केवल ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान वो एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है, और मति ज्ञान तो ये परोक्ष की बात है। मति ज्ञान इंद्रिय जन्य है, ये श्रुतको यानी द्रव्य श्रुतको को जानने वाले मति ज्ञान की बात चल रही हो, तो यहाँ मति ज्ञान इंद्रिय जन्य है और अवधि व केवल ज्ञान अति इंद्रिय है, इंद्रिय के माध्यम से नहीं जाना जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान से अवधि और केवल ज्ञान के महात्म्य की अपेक्षा, महानपना की अपेक्षा उनकी पहले पूजा की है, शंका, गौतम स्थविर का ऐसा अभिप्राय रहा है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? पहले उनका भाव नहीं था बताया, फिर उनका अभिप्राय, वो भाव के पीछे क्या था उसकी चर्चा चल रही है। समाधान, उक्त अभिप्राय के अविनाभावी वचन रूप कार्य से वह जाना जाता है। जैसा अभिप्राय है वैसे ही वो वचन रूप कार्य ने नमस्कार में किसको नमस्कार किया है उसी से उनका अभिप्राय का पता चल जाता है। शंका, बीज बुद्धि आदि के धारकों की पहले पूजा क्यों नहीं की? ये जैसे कोष्ठ बुद्धि है वैसे बीज बुद्धि नाम के भी एक प्रकार है, तो उसको पहले क्यों नहीं नमस्कार किया? समाधान, नहीं की क्योंकि बीज बुद्धि आदि की अपेक्षा धारणा का गुण गौरव अधिक पाया जाता है, कारण कि धारणा के बिना बीज बुद्धि आदिकों की विफलता देखी जाती है। अब बीज बुद्धि क्या है वो समझाएंगे, तो जहां धारणा होगी तभी तो वो स्मरण में आएगी ना बात। बीज बुद्धि ने कोई एक अक्षर बताया और पूरा ये समझना, उसको बीज बुद्धि कहेंगे। अब आगे उनको नमस्कार कहेंगे, नमो बीज बुद्धिनम, बीज बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो। यहां जिनों को इस पद की अनुवृत्ति होती है, नमो बीज बुद्धिनम कहा, परंतु बीज बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, ऐसे पूरा उस ट्रांसलेशन में तो उसको पूरा ही बता दिया है। इस कारण बीज बुद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, इस प्रकार इसका इतना सूत्र है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। बीज के समान बीज कहा जाता है, बीज बुद्धि में बीज का अर्थ है बीज, जैसे हम अन्य धान्य धान फल आदि के बीज कहते हैं वही अर्थ में यहाँ बीज शब्द है। बीज के समान जो होता है वह बीज कहा जाता है। ये बुद्धि कैसी है, बीज के समान है। जिस प्रकार बीज मूल अंकुर पत्र पौर स्कंध प्रसव तुष कुसुम क्षीर और तंदुल आदिकों का आधार है, उसी प्रकार यानी बीज के द्वारा वृक्षों के अलग अलग पार्ट जो है अवयव है, वृक्ष उत्पन्न होता है ना उसमें सभी है ना, स्कंद भी है शाखाएं भी है पत्ते भी है फूल भी है फल भी लगेंगे, वो सबका आधार कौन है, वो बीज है। उसी प्रकार 12 अंगों के अर्थ का आधारभूत जो पद है वह बीज तुल्य होने से बीज है। 12 अंगों के अर्थ का आधारभूत क्या है, पद, पद यानी शब्द, पदों से रचना होती है ना वाक्यों की वगैरह, जैसे अक्षरों से पद होते हैं और पदों से आगे की सब अनुयोगों की आदि की रचना होती है, तो पद उसका बीज है, उसका आधारभूत है, बीज तुल्य होने से बीज है। बीज पद विषयक मति ज्ञान भी कार्य में कारण के उपचार से बीज है। बीज पद विषयक जो मति ज्ञान है वो क्या है, वो एक शब्द कहा तो उसके द्वारा सारा ही समझ में आ गया। जैसे ब्रेन कहा तो ब्रेन में क्या क्या उसके फंक्शन है, उसकी रचना कैसी है, क्या क्या होता है, कैसे कंट्रोल होता है, जिसको कोई डॉक्टर है तो उसको ये सारा ही ज्ञान है ना, तो वो एक शब्द से उसका ये सारा ही ज्ञान ख्याल में आता है, तो ये उसको बीज कहेंगे। वैसे यहाँ शास्त्र का कोई एक शब्द है तो उसके द्वारा वो पूरा ही का ज्ञान होना, तो उसको कहते हैं बीज बुद्धि। मराठी में कहते हैं ना ता से ताक बात वैसे वो बीज पद के द्वारा पूरे वो उसकी उसका ख्याल में आ जाना, ज्ञान में आना, उसको बीज बुद्धि कहते हैं। यानी शब्द तो हो गए लिमिटेड और उसका ख्याल होगा अर्थ बहुत ज्यादा। संख्यात शब्दों द्वारा अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंगों के साथ बीज पद की जानने वाली बीज बुद्धि है, यह तात्पर्य है। क्या कहते हैं, संख्यात शब्दों के द्वारा अनंत अर्थों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान के भी शब्द लिमिटेड है, उसमें भी पूरा श्रुत ज्ञान है, उसमें एक कोई विशिष्ट शब्द कहने से, जैसे आपके पास कोई सिंबल होता है या कंप्यूटर में क्या कहते हैं, उसको निकाला तो वो पूरा ही चार्ट आ गया, है ना। वैसे एक विशिष्ट पद के द्वारा उतने पूरे का ही ज्ञान होना, उसको बीज बुद्धि कहते हैं। शंका, बीज बुद्धि अनंत अर्थों से संबद्ध अनंत लिंग रूप बीज पद को नहीं जानती, क्योंकि वह क्षावश्रमिक है। क्या कहते हैं, बीज बुद्धि जो है क्षावश्रमिक ज्ञान है ना, मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि या मति ज्ञान के भेद है, तो कहते वो अनंत को कैसे जान सकते, क्योंकि वो क्षावश्रमिक ज्ञान है। समाधान, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार क्षायोपशमिक परोक्ष श्रुतक ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान से विषय किए गए अनंत अर्थों का परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है। क्या कह रहे यहाँ, केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष जानते हैं सभी पदार्थों को, इस विश्व में 6 द्रव्य है, वो प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक गुण में हर समय पर्याय हो रही है, वो तीन काल की कितनी हो, ये सारे जो हम भी जान रहे हैं ना, हमने कैसे जाना, आगम के द्वारा जाना है, श्रुतक ज्ञान के द्वारा जाना, कितना जाना, जितना केवल ज्ञानियों ने प्रत्यक्ष जाना और जानकर जितना बताया उतना हमने श्रुतक ज्ञान के द्वारा जाना, यानी आगम के द्वारा भी हम जो सत्य स्थिति है उसको जान रहे हैं। हमें तो केवल ज्ञान है ही नहीं है, फिर भी जितना केवल ज्ञानी जानता है वो हम श्रुत ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, आगम के द्वारा जानते हैं। ये आगम का ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है, आगम को भी प्रमाण कहा है, सही ज्ञान है। क्या है, हमें लगता है ये गोमर सार में गाथा है कि जो श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञान में भेद मानता है ज्ञान में, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के द्वारा भी वही जाना है जो केवल ज्ञानी ने जानकर बताया, तो हमारा ज्ञान भी वो सत्य है, सही है। हाँ देखो, देखो क्षावश्रमिक ज्ञान होने पर भी, श्रुत ज्ञान क्षावश्रमिक ज्ञान है, वो क्षावश्रमिक ज्ञान होने पर भी जितना केवल ज्ञान का विषय उतना उसको भी जानने में आता है। जैसे जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल उससे अनंत अनंत है, ये सारे हमने आगम के द्वारा जाना ही है ना, ये इसको नहीं जानना नहीं कहते, जानना ही कहते। अब आगे, उसी प्रकार मति ज्ञान के द्वारा भी सामान्य रूप से अनंत अर्थों को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। शंका, यदि श्रुत ज्ञान का विषय अनंत संख्या है, ये संख्या पर उतर आया, श्रुत ज्ञान का विषय अनंत संख्या है, तो 14 पूर्वी का विषय उत्कृष्ट संख्यात है, ऐसा जो परिक्रम में कहा है वह कैसे घटित होगा। देखो, ये तो श्रुत ज्ञानियों का विषय कितना होता है, संख्यात होता है, अधिक से अधिक उत्कृष्ट संख्यात तक जान सकते हैं। असंख्यात को विषय करने वाले वो अवधि ज्ञानी है, वो असंख्यात उत्कृष्ट असंख्यात तक को जानेंगे, परंतु अनंत को विषय करने वाले तो केवल ज्ञानी है, ऐसा आता है, सूत्र में ही आता है। तो शंकाकार पूछता है, पहले जो हमने जाना था परिक्रम क्या है, यही टीका है, षटखंडागम की टीका है, उसका नाम है परिक्रम। तो ये परिक्रम नाम की टीका में ऐसा आया है, क्या 14 पूर्वी का विषय, 14 पूर्वी ने 14 पूर्व को जानने वाला उसको कहते हैं 14 पूर्वी, 11 अंग और 14 पूर्व कहते ना वो, यानी 12 ही अंगों का जानने वाला है उसका विषय, वो कितने तक जानते हैं संख्याओं को, उत्कृष्ट संख्यात। संख्याओं के तीन भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, उसमें संख्यात भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक है, असंख्यात भी जघन्य से उत्कृष्ट तक अलग अलग भेद है, और अनंत भी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक है। उसमें से ये श्रुत ज्ञानी कहाँ तक विषय कर, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञानी भी कहाँ तक जानता है, तो संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात तक। तो उसके साथ विरोध आएगा, ऐसा इसका क्षोभशम है ना, तो क्षोभशम ज्ञानी असंख्यात और अनंत का वो उसका विषय नहीं है, ऐसा कहते हैं। टीका है, कुंदकुंदाचार्य। परिक्रम वो भी है और परिक्रम एक 12वें अंग का एक भेद भी परिक्रम है। हाँ वो भी परिक्रम है, परंतु यहाँ जो है परिक्रम में कहा है का अर्थ क्या है, ये किसी टीका के नाम है ना, यहाँ जो हमारे सामने शास्त्र है उसी का नाम लेके यहाँ समझाया है। जैसे यहाँ के गोमटसार में ऐसा कहा है, वैसे परिक्रम में ऐसा कहा है। तो यहाँ धवला में तो कितनी बार परिक्रम का दाखला दिया है, परिक्रम का, ये अभी हाल में अवेलेबल नहीं है परिक्रम नाम की। देखो समाधान क्या कर रहे हैं इसके पर, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात को ही जानता है, ऐसा यहाँ नियम नहीं है। और यहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष जानने की बात चल रही ना, वहाँ है तो शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही है, परंतु जो केवल ज्ञानी ने बताया कि जीव अनंत है और हमने जाने जीव अनंत है, हमने वो प्रत्यक्ष जानकर नहीं कहा है, वो हमने आगम में जो है उसके आधार से कहा है। शंका, श्रुत ज्ञान समस्त पदार्थों को नहीं जानता है क्योंकि वो अभी गाथा यहाँ उद्धृत कर रहे हैं गोमटसार जीव कांड की। पन्नवणिज्जा भावा अनंत भागो अणभिलप्पाणम पन्नवणिज्जाणम पुनः अनंत भागो सुदणिबद्धो। क्या कहते हैं, वचन के अगोचर ऐसे, अगोचर यानी वचन के द्वारा नहीं बताए जाते ऐसे जीवादिक पदार्थों के अनंतवे भाग प्रज्ञापनीय पन्नवणिज्जा, अर्थात तीर्थंकर की सातिशय दिव्य ध्वनि में प्रतिपाद्य होते हैं यानी बताए जाते हैं। क्या कहते हैं, जीवादिक अनंत पदार्थ है और उनके भाव तो कितने अनंतानंत है, अब वो सभी तो वाणी के द्वारा नहीं बताए जाते। तो केवल ज्ञानी जितना जानेंगे वो पूरा का पूरा भाव तीर्थंकर की वाणी में भी नहीं आएगा। तो कहते हैं वचन के अगोचर ऐसे जीवादिक पदार्थों के अनंतवे भाग प्रज्ञापनीय अर्थात तीर्थंकर की सातिशय दिव्य ध्वनि में प्रतिपाद्य होते हैं, उसमें अनंतवाही भाग दिव्य ध्वनि में आता है, तथा प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण द्वादशांग श्रुत में निबद्ध किए जाते हैं। हमने पहले इसको पढ़ा था क्या, कि जो तीर्थंकर या जो केवल ज्ञानी जानते हैं उसका अनंतवा भाग उनकी वाणी में आता है दिव्य ध्वनि के द्वारा। दिव्य ध्वनि में जितना बताया जाता है उसका अनंतवा भाग वो गणधर के ज्ञान में आता है, जिसका जितना गणधर के ज्ञान में आता है वो भी पूरा का पूरा उनकी वाणी में भी कहाँ से आएगा, वो उसकी वाणी में नहीं आता। तो उसमें कितना श्रुत निबद्ध जो है, श्रुत रूप से जो निबद्ध है, रचना की गई है, वो उसका अनंतवा भाग ही है। ये शंकाकार यहाँ प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि श्रुत ज्ञानियों की लिमिट बता रहे हैं ना। इस प्रकार का वचन है ये वचन कहकर उसने वही शंका चालू रखी कि श्रुत ज्ञानी तो क्षोभम ज्ञानी है, वो इतने अनंत का कह भी नहीं सकता, उसके ज्ञान में भी नहीं आ सकता। उसका समाधान इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि समस्त पदार्थों का अनंत वा भाग द्रव्य श्रुत ज्ञान का विषय भले ही हो। क्या कहते हैं, द्रव्य श्रुत ज्ञान यानी वचन की रचना, तो वचन की रचना में भले ही अनंत वा भाग हो किंतु भाव श्रुत ज्ञान के विषय तो समस्त पदार्थ है।
आपने जो बीच में डाला ना,
हाँ,
कि जितना बोलते हैं जितना उनके ज्ञान में आता है उससे कम
वाणी में आता है,
वाणी में आता है, लेकिन वाणी का माने उसके बाद का जो जो डाला कि गौतम स्वामी के ज्ञान में जो आता है वो उसका क्यों कमाल है, उससे क्यों क्या मार?
शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है ना,
क्योंकि वाणी में जितना बताया उन्होंने जितना बताया ज्ञान दोनों का
ज्ञान ज्ञान में उतना आएगा, वचन में कम आएगा, वचन में कम आएगा, क्योंकि यहाँ भाव श्रुत ज्ञान में सब आएगा, ऐसी बात कर रही है, बराबर है आपका कहना, उनके वाणी में कम आएगा। हाँ, जैसे हम कहते ना, हम समझते हैं मगर बोल नहीं पाते, ये तो सब हम सब कहते हैं ना ऐसा, ये हमारे ख्याल में आ गया परंतु हम वी कैन नॉट एक्सप्रेस, वाणी की वो लिमिटेशन से। हाँ, यहाँ ये देखो, ये कौन सी गाथा है, 334 पेज नंबर 481 देखो यहाँ लिखा है, देखो अनभिलाप्या नाम कहिए वचन गोचर नाही, ऊपर है ना अनभिलप्पाणम, अभी पेज नंबर 481 है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, पेज 481 वही गाथा तो उन्होंने लिखी है, 334 गाथा, अनभिलाप्या नाम कहिए वचन गोचर नाही, केवल ज्ञान ही के गोचर जो भाव कहिए जीवादिक पदार्थ, तिनके अनंत वे भाग मात्र जीवादिक अर्थ, ते प्रज्ञापनीयाः कहिए तीर्थंकर की सातिशय दिव्य ध्वनि करी कहने में आवे है, जितना उनके ज्ञान में है उसका अनंतवा भाग कहने में आता है। बहुरी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि करी पदार्थ कहने में आवे है, तिनके अनंत वे भाग मात्र द्वादशांग श्रुत विषय व्याख्यान कीजिए है। अब आपका जो सवाल था उसके आगे की वहां लिखा गया, जो श्रुत केवली को भी गोचर नाही ऐसा पदार्थ कहने की शक्ति दिव्य ध्वनि विषय पाई है। जो श्रुत यानी उन शब्दों में तो इतनी शक्ति है कि वो गणधर भी उसको पकड़ नहीं पाए। बहुरी जो दिव्य ध्वनि करी न कहा जाए तिस अर्थ को जानने की शक्ति केवल ज्ञान विषय पाई है ना, ये सब। हाँ, ऐसा जानना चार सौ 481 पृष्ठ पर ही अभी हमने देखा। तब यहाँ तो उल्टी शंकाकार की ये शंका है, ऐसा है और आप कह रहे हो श्रुत ज्ञानी जितने वो है उसको जान नहीं सकते, इतना जान नहीं सकते, तो उसका उत्तर कहते हैं कि समस्त पदार्थों का अनंतवा भाग द्रव्य श्रुत ज्ञान का विषय भले ही हो, यानी शब्द रचना का विषय भले ही हो, किंतु भाव श्रुत ज्ञान के विषय तो समस्त पदार्थ है, क्योंकि ऐसा माने बिना तीर्थंकरों के वचनातिशय में अर्थ के अभाव का प्रसंग आता है, उनके वचन की सार्थकता नहीं बनती। वो उनके वचन तो और भी अधिक उत्कृष्ट है ना, कि जिसका भाव तो ये गणधर भी नहीं कितना पकड़ सकते, इसलिए बीज पदों का ज्ञान कराने वाली बीज बुद्धि है यह सिद्ध हुआ। पद तो लिमिटेड ही है परंतु उससे वो भाव अधिक पकड़ में आता है, ऐसा कहना चाहते हैं। बीज पदस्थित प्रदेश से अधस्तन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होकर पीछे उपरिम श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त होने वाली बीज बुद्धि, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर कोष्ठ बुद्धि आदि चार ज्ञानों की युगपत एक जीव में सर्वदा उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं, बीज बुद्धि यानी विशिष्ट पद वाली बुद्धि है, तो फिर वो ऊपर के ऊपर का भी ज्ञान कराती है, नीचे का ज्ञान करती है, ऐसा कुछ हो तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बीज बुद्धि वालों के युगपत कोष्ठ बुद्धि आदि ये अन्य भी उनके युगपत हो सकते हैं, जिसको बीज बुद्धि उसके अन्य भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो किसी आचार्य का कहना है वो घटित नहीं होता। शंकाकार कहते वह कैसे, तो उसका समाधान, बीज बुद्धि सहित जीव में न तो अनुसारी बुद्धि संभव है और न प्रतिसारी बुद्धि संभव है। ये अनुसारी प्रतिसारी क्या होता है, इसी पृष्ठ में आगे 60 नंबर पर देख, देखो नीचे से पांचवी लाइन, पदानुसारी बुद्धि। देखो पद का अनुसरण जो करती है वो पदानुसारी बुद्धि। पद यानी कोई विशिष्ट शब्द, उसको पद कहते हैं। देखो ऊपर लिखा है दूसरी लाइन में, प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहां प्रयोजन नहीं है। ये कहां प्रयोजन होता है, प्रमाण पद और मध्यम पद? आपको मालूम है पद के तीन अलग अलग भेद होते हैं? नहीं मालूम? पद यानी शब्द, तो कहीं तो प्रमाण पद होते हैं, कहीं मध्यम पद होते हैं, और कहीं अर्थ पद होते हैं। अर्थ पद ये ना, तीसरा भेद कौन सा है मालूम नहीं है आपको? मुझे तो लगता है अर्थपद ही होना चाहिए, श्रुत ज्ञान के विषय में होगा 500 समथिंग पेज आगे। जहां वो सारे अक्षर पद मात्रा नाम वो सब बता, पेज नंबर है 484 के भी आगे, हाँ बराबर है मेरा, 482 पृष्ठ पर है। पद तीन प्रकार है, निकालना जिसके पास है समय ज्ञान चंद्रिका, 482 पृष्ठ। पद तीन प्रकार है, अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तहां जिही अक्षर समूह करी विवक्षित अर्थ जानिए, सो तो अर्थ पद कहिए। हम अपनी भाषा में समझेंगे, विशिष्ट शब्दों द्वारा वाक्य तैयार होता है न? तो हमने दो तीन शब्द, जैसे राम ने आम खाया, राम ने एक पद हुआ, आम दूसरा पद हुआ, खाया तीसरा पद हुआ। इन पदों के द्वारा हमें कुछ विशिष्ट अर्थ ख्याल में आ गया। हमारी सारी वाक्य रचना तो ऐसे पदों के द्वारा ही तो होती है ना। अभी हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये अर्थ भाषित होता है, तो ये क्या है, अर्थ पद है। अभी बारिश आ रही है, तो इन पदों के द्वारा हमें कुछ ज्ञान हुआ, तो इसको कहते हैं अर्थ पद। दूसरी क्या बात है, प्रमाण पद। प्रमाण पद यानी फिक्स किसका प्रमाण होता है, जैसे अलग अलग छंद होते हैं, या अनुष्टुप छंद है, या कोई गाथा है, कोई श्लोक होते हैं, जैसे शार्दूल विक्रीत है, मंदाक्रांत है, वसंत तिलका है, तो उसके फिक्स नंबर ऑफ वहाँ वर्ड्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ड्स भी नहीं, अक्षर। अक्षरों की संख्या प्रमाणित होती है, विशिष्ट होती है। जैसे हम कहते नमः समय साराय, 8 हुए, स्वानुभूत्या चकासते, फिर 8, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे, ये हर एक 8 अक्षरों के ये 4 हो गए ना, तो इसको कहते हैं प्रमाण पद। कोई भी वो जो छंद है, जो कोई उसके अलग अलग होते हैं, तो उसमें उसके निश्चित प्रमाण में अक्षर होते हैं, अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, उसको प्रमाण पद कहते हैं। दूसरा जो मध्यम पद है, जिसके द्वारा ये सारा श्रुत की रचना होती है, उसको मध्यम पद कहते हैं। वो मध्यम पद में वो तो बहुत लंबा चौड़ा है उसका, उसमें अक्षरों की संख्या कितनी होती है, वो भी अपुनरुक्त अक्षर, तो कहते 1634,83,07,888। ये अपुनरुक्त अक्षर का अर्थ क्या होता है, जो फिर से रिपीट हुए तो भी नहीं गिनना, उसको कहते हैं अपुनरुक्त। जैसे कोई भी अंग्रेजी बुक है तो उसमें अपुनरुक्त वो ABCD कितनी बार होगा, 26 ही है तो 26 ही बार होगा, उससे अधिक तो नहीं होगा, कितने ही बार उसी के कॉम्बिनेशन होंगे। तो वैसे यहाँ पर ये इतने अक्षर है अपुनरुक्त अक्षर, इसका एक पद, और हमने तो एक एक पद के ये गाए, कितने होते वो 18,000 पद, 36,000 पद, ऐसे जो है ना, इतने पद उसमें होते हैं, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, ये बात कह रहे। पदानुसारी बुद्धि की बात चल रही नहीं यहाँ, तो पदानुसारी पद के अनुसार जिसकी बुद्धि है, पदानुसारी बुद्धि। अब उसमें नीचे लिखा है वह पदानुसारी बुद्धि, नीचे से पांचवी लाइन, धवला पुस्तक 60 पृष्ठ, वह पदानुसारी बुद्धि। हम अनुसारी प्रतिसारी का अर्थ देख रहे हैं ना, मिला आपको अश्विन भाई को, नहीं मिला? पेज नंबर 60 नीचे से पांचवी लाइन देखो, वह पदानुसारी बुद्धि अनुसारी प्रतिसारी और तदुभय सारी के भेद से तीन प्रकार की। ये हमें अनुसारी का अर्थ नहीं समझ में आया था ना, इसलिए आगे देख रहे। जो बीज पद से अधस्तन पदों को ही बीज पदस्थित लिंग से जानती है वह प्रतिसारी बुद्धि है। जो उपरिम पदों को ही जानती है वह अनुसारी बुद्धि है। दोनों पार्श्वस्थ पदों को, यानी ऊपर और नीचे, पहले वाले और बाद वाले पदों को नियम से अथवा बिना नियम के भी जो जानती है वह उभयसारी बुद्धि है। दोनों ओर की, उस पद के दोनों ओर के बातों को जानेंगे, इन पदानुसारी जिनों को न तो कर वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ आते हैं अपने 57 पृष्ठ पर। यहाँ क्या बात चल रही थी कि कितने आचार्य क्या कहते हैं, तो बीज पदस्थित वाले बीज बुद्धि के कारण ऊपर के भी और नीचे के भी ज्ञान में उत्पत्ति में निमित्त है, उसको बीज बुद्धि कहना। तो उसके लिए कहते हैं ये घटित नहीं होता, क्यों नहीं घटित होता है, तो नीचे के लाइन में समाधान जो है 57 पृष्ठ पर अंतिम लाइन, बीज बुद्धि सहित जीव में न तो अनुसारी बुद्धि संभव है। ये बीज बुद्धि की बात चल रही है, वहां हमने जो पढ़ा था ना अनुसारी प्रतिसारी, वो पदानुसारी बुद्धि में देखा था, वो पदानुसारी बुद्धि के भेद थे। ये किसकी चल रही बात, बीज बुद्धि की चल रही। तो बीज बुद्धि सहित जीव में न तो अनुसारी बुद्धि संभव है और न प्रतिसारी बुद्धि संभव है, क्योंकि उभय दिशा विषयक, उभय ने अधस्तन और उपरिम, उसके पहले पहले वाले और ऊपर ऊपर के, उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान के उत्पन्न करने में समर्थ ऐसी बीज बुद्धि को प्राप्त जीव में बीज बुद्धि के विरुद्ध अनुसारी और प्रतिसारी बुद्धियों के अवस्थान का विरोध है। यानी ये बीज बुद्धि में ये होती नहीं बात, वो पदानुसारी में बात आएगी। उभय सारी बुद्धि भी संभव नहीं है, क्योंकि वह अधस्तन श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं होती। ऐसे नियम में प्रतिबद्ध बीज बुद्धि युक्त जीव में अनियम से उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वभाव वाली उभय सारी बुद्धि के अवस्थान का विरोध है, यानी वो बीज बुद्धि वाले में ये नीचे की ओर का ऊपर की ओर के शुद्ध ज्ञान का निमित्त है, ऐसे नहीं होता। अनुसारी प्रतिसारी उभय सारी जो है वो बीज बुद्धि में नहीं होता है, और एक जीव में सर्वदा चार बुद्धियों की एक साथ उत्पत्ति हो ही नहीं, ऐसा है नहीं, यानी हो सकती है, हो ही नहीं ऐसा नहीं, एक अर्थ क्या होता है, हो सकती है, क्योंकि 18 नंबर को हम पढ़ेंगे ऊपर, बुद्धि तवो वियलथी उवन्न लथी तहे वो सहिया रसबलखीनाविय लद्धियो सत्तपन्नता व्युन्न विवुवन विवुवन था वो विवुवन यानी विक्रिया। देखो नीचे उसका अर्थ किया है, बुद्धि ये सात रिद्धियां का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। बुद्धि कहा तब बुद्धि रिद्धि ऐसा समझना चाहिए, वो उसके फिर भेद है, कोष्ठ बुद्धि है, बीज बुद्धि है वगैरह वगैरह। तो बुद्धि, तप, विक्रिया, औषधि, रस, बल और अक्षीण, इस प्रकार रिद्धियां सात कही गई है। इसकी बात आएगी आगे, अभी यहाँ कौन कौन सी रिद्धि उसके बता रहे, यानी बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। यहाँ पर उक्त गाथा के व्याख्यान में गणधर देवों के चार निर्मल बुद्धियां देखी जाती हैं। गणधरों को तो चार निर्मल बुद्धियां होती हैं। दूसरी बात यह है कि गणधर देवों के चार बुद्धियां होती है क्योंकि उनके बिना 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। उनके तो कोष्ठ बुद्धि पूरा ही द्रव्य पर्याय का ज्ञान है ही है, फिर भुज बुद्धि है ने वो तो एक पद से पूरा ही जो कुछ अनुयोग है जो कुछ है वो सब जानेंगे, ये उनमें सभी प्रकार की ये बुद्धि रिद्धि होगी। शंका, 12 अंगों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग कैसे आता है? उसका समाधान, गणधर देवों में कोष्ठ बुद्धि का अभाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अवस्थान के बिना उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान के विनाश का प्रसंग आता है। उनकी बुद्धि में सारी ही द्रव्य पर्याय की बातें आई तभी तो वो बता सकेंगे, और बिना ज्ञान के कैसे कहेंगे, श्रुत की रचना कैसे करेंगे, तो कोष्ठ बुद्धि तो होगी ही। अवस्थान में रहना यानी ज्याला बुद्धिच नाही आहे त्याच्याशिवाय त्यांनी रचना कशी करायची, असं अवस्थाने बुद्धी काय आहे ना, बुद्धी का होना मतिशुत अवधी मनपरे तो होते ही है, परंतु ये बुद्धि की वृद्धि भी चार प्रकार की बुद्धि है, उसमें भी कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि आदि ये चार प्रकार की बुद्धि आदि है, बुद्धियों में चार प्रकार डाले। अभी यहाँ बता रहे ना ये कौन कौन सी, देखो पहले कौन सी आई, कोष्ठ बुद्धि, उसका अभाव नहीं हो सकता। फिर बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता क्योंकि उसके बिना गणधर देवों को तीर्थंकर के मुख से निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बहुत लिंग अलिंगिक बीज पदों का ज्ञान न होने से द्वादशांग के अभाव का प्रसंग आता है। यानी इतना सारा जो उनके ख्याल में है, जैसे कंपार्टमेंट है ना, उसमें कुछ एक पद से वो पूरा ही उसका ज्ञान हो जाएगा उनका। बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि है, उससे द्वादशांग की उत्पत्ति होती है, और उस बीज बुद्धि के बिना द्वादशांग की उत्पत्ति हो नहीं सकती क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग आता है। अब तीसरी बुद्धि की बात चल रही, उनमें पदानुसारी नामक ज्ञान का अभाव नहीं है, जिसको कहते पदानुसारी बुद्धि। पदानुसारी बुद्धि है नहीं, अभी तीसरी, पहली कौन सी थी? कोष्ठ बुद्धि, दूसरी बीज बुद्धि, और तीसरी पदानुसारी बुद्धि, या कहो पदानुसारी ज्ञान कहो, एक ही बात है। क्योंकि बीज बुद्धि से जाना है स्वरूप जिनका, तथा कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त किया है अवस्थान जिन्होंने, ऐसे बीज पदों से, यानी बीज पदों के द्वारा, बीज पद है ना, अभी पदानुसार, अभी पद पर आ गए, पहले बुद्धि थी, बीज जैसे बुद्धि उसके द्वारा, अभी ऐसे बीज पदों से इहा और अवाय के बिना बीज पद की उभय दिशा विषयक श्रुत ज्ञान तथा अक्षर पद वाक्य और उनके अर्थ विषयक श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति बन नहीं सकती। किसके द्वारा? पदानुसारी जो है, अनुसार यानी उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर और नीचे की ओर के सब श्रुत ज्ञान को जानना, ये ईहा और अवाय के बिना ही वो सब, उसका आगे वाला पीछे वाला सब श्रुत ज्ञान जान सकते हैं, उसको कहते हैं पदानुसारी बुद्धि। हाँ, ईहा अवाय मति ज्ञान के भेद है, और ये बीज बुद्धि ये भी मति ज्ञान का भेद है, यानी ईहा अवाय धारण वो क्रम नहीं फिर से करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट उसके बिना ही पदानुसारी बुद्धि ऊपर और नीचे के श्रुत ज्ञानों को जान लेते हैं। ये तीसरे नंबर का हुआ। चौथा संभिन्न श्रोतृत्व, ये चौथी प्रकार की बुद्धि। अब बात आई थी ना कि गणधरों को चार प्रकार की बुद्धि होती है, चार निर्मल बुद्धियां देखी जाती है लिखा था, तो ये चार निर्मल बुद्धियां, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व। क्योंकि अभी उसका अर्थ करेंगे हम आगे, उसके बिना अक्षर अनक्षरात्मक 700 कुभाषा और 18 भाषा स्वरूप, लघु भाषा कहो, उसी को यहाँ कुभाषा कहा, लघु भाषा हम कहते हैं, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा, 700 कुभाषा और 18 भाषा स्वरूप, नाना भेदों से भिन्न बीज पद रूप, वो प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव प्राप्त होने वाली ऐसी दिव्य ध्वनि का ग्रहण न होने से द्वादशांग की उत्पत्ति के अभाव का प्रसंग आता है। देखो, संभिन्न श्रोतृत्व से क्या क्या होता है, ये अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सब कुछ जानते हैं, एक बात, ये दिव्य ध्वनि कैसी है, 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप से सुनी जाती है, अपनी अपनी भाषा में जानते हैं ना सब, तो वो ध्वनि में ऐसी कुछ विशेषता है कि इतनी उसमें से भाषाएं निकलती है, ख्याल है ना, तो ये सभी को एक साथ जानेंगे, बिल्कुल। ये संभिन्न श्रोतृत्व का अर्थ ही ऐसा होता है, भिन्न भिन्न शब्दों को एक साथ, इतने शब्द उत्पन्न होते, सबको अलग अलग जानते हैं, अभी यहाँ कोई 4-6 लोग, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई जर्मन में बोल रहा है, तो सबको एक साथ जानेंगे, और एक साथ जानते हुए स्पष्टता भिन्न भिन्न भी जानेंगे, एट अ टाइम भिन्न भिन्न जानेंगे, अभी उसकी बात आएगी, देखो आगे। तो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक को भी जानते हैं, 700 कुभाषा 18 भाषा यानी लघु भाषा और महाभाषा को भी एट अ टाइम जान रहे, नाना भेदों से भिन्न बीज पद रूप, कितने बीज पद उसमें होगी ना अलग अलग, उन सभी नाना बीज पदों को एट अ टाइम जान रहे, और प्रत्येक क्षण में भिन्न भिन्न भाव को, भाव प्राप्त होने वाली दिव्य ध्वनि, प्रत्येक क्षण में उसके भी कोई जो भिन्न भिन्न भाव है, ऐसे दिव्य ध्वनि का ग्रहण यानी जानना यदि नहीं होगा तो द्वादशांग की उत्पत्ति भी नहीं होगी, इतनी जानने की उनकी सामर्थ्य, उसी को यहाँ संभिन्न श्रोतृत्व कहा। इस कारण बीज पदों के स्वरूप का जानना बीज बुद्धि है ऐसा सिद्ध हुआ। उक्त बुद्धि से भिन्न न होने के कारण जीव भी बीज बुद्धि है। उन बीज बुद्धि के धारक जीनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। आपको संभिन्न श्रोतृत्व की बात आगे आ गई है, 9 नंबर के सूत्र में आने वाली है, उसको देखेंगे आगे। फिर पूछा, यह बीज बुद्धि किस कारण से होती है? तो उसका समाधान, ये बीज बुद्धि हमने देखी ना, ये बुद्धि जो है वो मति ज्ञान के भेद चल रहे यहाँ पर। हाँ, तो ये बीज बुद्धि किस कारण से होती है? वह विशिष्ट अवग्रह आवरणीय के क्षोभशम से होती है। मति ज्ञान के कुछ भेद याद है क्या क्या होते हैं? हाँ, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। तो उसमें ये अवग्रह संबंधी जो आवरण कर्म है उसका क्षोभशम से ये होती है। यहाँ तक ये बीज बुद्धि वगैरह की बात की उन्होंने। अब कहते हैं, नमो पदानुसारिणम, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, अब पदानुसारी बुद्धि की बात चल रही है। पदानुसारी रिद्धि के धारक जिनों को नमस्कार हो, यानी पदानुसारी बुद्धि रिद्धि है वो, पदानुसारी रिद्धि कहते हैं उसको। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है, यानी वो कंटिन्यू रहता है, जिन शब्द यहाँ भी ले लेना, पदानुसारी रिद्धि के धारक जिनों को नमस्कार हो, इसलिए पदानुसारी रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहना चाहिए। प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने से, अभी हमने देखा था ना, प्रमाण पद और मध्यम पद का अर्थ अभी देखा था, न होने के कारण बीज पद का ग्रहण किया है। पद में किसको लेना? बीज पद को यहाँ पद कहा है। पदानुसारी में प्रमाण पद या मध्यम पद की बात नहीं है। प्रमाण पद को हम कहते हैं निश्चित संख्या, किसी श्लोक में किसी छंद में जो निश्चित संख्या आती है उसको प्रमाण कहते हैं। और मध्यम पद ये जिसके द्वारा अनुयोगों की रचना होती है, ये अंगों की रचना होती है, उसको मध्यम पद कहते हैं। यहाँ बीज पद की बात है, यानी जिस शब्द के द्वारा ये पूरा कुछ अनुयोग का या कुछ जो ज्ञान होता है उसको बीज पद कहते हैं। पद का जो अनुसरण अर्थात अनुकरण करती है वह पदानुसारी बुद्धि है। बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर यहाँ यह इन अक्षरों का लिंग होता है और इनका लिंग नहीं होता, इस प्रकार विचार कर समस्त श्रुत के अक्षर और पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। पद को जानने वाली, विशिष्ट पद को जानने वाली, वो बीज बुद्धि कहेंगे। परंतु उस पद के द्वारा ये इन अक्षरों को, उस एक पद के द्वारा पूरा ही जो कुछ उसका कंपार्टमेंट होगा, मान लेते एक कोड वर्ड है, उसके द्वारा पूरा ही एक पद के द्वारा पूरे अनुयोग का ज्ञान हो जाना, उसको कहेंगे पदानुसारी बुद्धि। उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वह अक्षर पद विषयक नहीं, क्योंकि उन अक्षर और पदों का बीज पद में अंतर्भाव हो जाता है। देखो, अक्षरों से, अक्षरों का या पद का ज्ञान वो तो मति ज्ञान में आया, और उसके द्वारा सूचित अर्थों का, पदार्थों का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान में आता। उस एक पद के द्वारा अभी ये आगे पीछे का जो कुछ जाना वो श्रुत ज्ञान का भेद हो जाएगा उसके। देखो यहाँ क्या लिखा, उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वह अक्षर या पद विषयक नहीं। अक्षर यानी अक्षर, लेटर्स, और पद यानी वर्ड। अक्षर या पद संबंधी वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि अक्षर और पदों का तो बीज पद में अंतर्भाव हो जाता है, उसको जानने वाला तो मति ज्ञान का भेद हो जाएगा। परंतु वह पदानुसारी बुद्धि अनुसारी, प्रतिसारी और तदुभयसारी के भेद से तीन प्रकार की है। जो बीज पद से अधस्थन पदों को ही बीज पदस्थित लिंग से जानती है वह प्रतिसारी बुद्धि है। जाना तो बीज पद को, पर उसके अधस्थन पदों को उसी पद के द्वारा अधस्थन पदों को भी जान लेना वो प्रतिसारी बुद्धि हुई। और उस एक पद के ज्ञान द्वारा आगे के पद जान लेना उपरिम पदों को ही जानती है वह अनुसारी बुद्धि है। और दोनों पार्श्वस्थ, पार्श्व यानी उसके बाजू में, स्थ यानी रहने वाले, यानी दोनों ओर रहने वाले पदों को नियम से अथवा बिना नियम के भी जो जानती है वह उभयसारी बुद्धि है। बीच का एक पद लिया तो उसके द्वारा आगे के पीछे के सभी पदों का ज्ञान हुआ तो उसको उभयसारी कहा। इन पदानुसारी जिनों को नत होकर भूमि पतित होकर कृतिकर्म करता हूँ, यह सूत्र का अभिप्राय है। क्या कहते हैं? इन पदानुसारी जिनों को, ऐसे मुनिराजों को, भूमि पतित होकर यानी जमीन पर साष्टांग नमस्कार भी कहते ना, यानी जमीन पर घुटने टेक कर हाथ जोड़कर, यानी अंगों का जमीन को स्पर्श करके, भूमि पतित होकर यानी जमीन को अपने अंगों का स्पर्श करके नमस्कार करते हैं। कृतिकर्म करता हूँ यानी यहाँ वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यह सूत्र का अभिप्राय है। शंका, यह किससे होती है? पहले क्या कहा था? अवग्रह आवरणीय कर्मों के क्षोभ से, किसमें? बीज बुद्धि में, बीज बुद्धि में। अब ये पदानुसारी में किस कारण होता है? तो कहते इहावरणीय और अवायावरणीय के तीव्र क्षोभ से होती है। इहा संबंधी आवरण, उसको इहावरणीय कहा। हमने कहा ना अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह के आवरण के तीव्र क्षोभशम से बीज बुद्धि होती देखा हमने। इहा आवरण और अवाय आवरण के तीव्र क्षोभशम से पदानुसारी बुद्धि, और धारणा के तीव्र क्षोभशम से क्या देखा था हमने? कोष्ठ बुद्धि, पहले ही देखी थी ना हमने। अभी ये जो चौथी है, उसकी बात नहीं, ये ज्ञान की विशिष्ट क्षमता की बात चल रही है। पद को जो जानता है वो तो बीज वाले में आ गया, वो अवग्रह में आ गया। बीज को, बीज पद को जाना, उसके द्वारा आगे और पीछे के जानना, इसको पदानुसारी कहते हैं। अनुसारी का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंगली, उसके फॉलो करना दोनों ओर। नमो संभिन्न सोदाराणम, संभिन्न श्रोता जिनों को नमस्कार हो। अभी बात आई थी नहीं, संभिन्न श्रोतृत्व बुद्धि के चौथे प्रकार की बुद्धि है। जिनों को इस पद की अनुवृत्ति आती है, संभिन्न, सम अर्थात भले प्रकार, श्रोत्रेन्द्रियावरण के क्षोभशम से जो भिन्न, भिन्न ने अनुविद्ध है, वे संभिन्न कहलाते हैं। भले प्रकार से भिन्न भिन्न को जानते हैं, मिली हुई बातों को वो भिन्न भिन्न एट अ टाइम जान रहे हैं। संभिन्न ऐसे जो श्रोता, वे संभिन्न श्रोता हैं। कथंचित युगपत प्रवृत्त हुए, यानी एक ही समय में चल रही है ना बातें, जैसे टीवी भी ऑन है, रेडियो भी ऑन है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं और हम भी कुछ बातें कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे, तो सभी आवाजें अलग अलग है, तो उसको अलग अलग सभी को पूरी तरह से जानना संभिन्न। तो युगपत प्रवृत्ति हुए, नहीं एट टाइम चल रहे बहुत सारे आवाज, कैसे? अक्षर और अनक्षर स्वरूप, भाषा स्वरूप और अभाषा स्वरूप, जो कुछ है अक्षर स्वरूप और अनक्षर स्वरूप, अनेक शब्दों के श्रोता। श्रोता है, हम भी सुनते हैं मगर हमको वो सब मिलकर कुछ नहीं ऐसा लगता है क्या चल रहा है, परंतु श्रोता यानी सबको भिन्न भिन्न सुनने वाले, यानी सभी का भिन्न भिन्न एट अ टाइम ज्ञान जिनको हो रहा है, वे संभिन्न श्रोता है। ऐसा निर्देश किया गया है, अभी उसकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो। विनोद भाई।